मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासिति चिस्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदि वंदितु सौव सिद्धे धूमचलमणोवहं गदिं पत्ते वोच्छामि समये पाहुड मिणमाशुत केवली भणिगम। आज से दशलक्षण या अष्टानिका महापर्व का अपना शाश्वत पर्व प्रारंभ हुआ है। जैसे दस लक्षण वर्ष में तीन बार होते हैं, ऐसे ही ये अष्टानिका महापर्व भी वर्ष में तीन बार होते हैं। दीपावली का पर्व अभी अपन लोगों ने मनाया, भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण कल्याणक महोत्सव, और तुरंत उसके बाद अष्टानिका पर्व। बहुत से लोग इस बात से भी परेशान है कि इतने पर्व क्यों आते हैं, तो मैंने कहा अच्छी बात है, अपन लोग जितने आत्मा की आराधना से विमुख हैं तो अपन लोगों को ये पर्व आकर के बार बार अपने को जगाते हैं। महावीर भगवान के निर्वाण कल्याणक पर्व ने अपने को इसलिए जगाया कि देखो, उन्होंने शेर की पर्याय में भी अपना काम कर लिया था और अपन मनुष्य होकर के भी वो काम नहीं कर पा रहे हैं, तो अपन उस शेर से भी गए बीते हो जाएंगे अगर ये काम नहीं किया तो। उसके बाद तुरंत अष्टानिका महापर्व। अब अष्टानिका महापर्व में नंदीश्वर दीप है, आठवां दीप, पूजा भी चलती है ना अभी, तो नंदीश्वर दीप के 52 जिनाले होते हैं और उन 52 जिनालयों में अभी स्वर्ग के देवलोक जितने भी होते हैं, बड़े बड़े इंद्र वगैरह, अपने सारा काम धाम छोड़ के, कोई काम होता नहीं वैसे स्वर्ग में, लेकिन फिर भी जो भी होता है उनका सब छोड़ के एकदम निवृत्ति लेकर 8 दिन तक भगवान की पूजन भक्ति आराधना अपना स्वात्मा का चिंतन और ये सब काम वो 8 दिन तक लगातार करेंगे। ठीक है, तो ये किस बात की प्रेरणा देता है कि भैया 8 दिन देवों से ज़्यादा अपने पास कुछ नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो जब वे निवृत्ति ले सकते हैं तो अपने को भी 8 दिन पूरी निवृत्ति लेकर के और ये तत्व ज्ञान को समझने का उपाय करना चाहिए। देखो सच में अपन महाभाग्यशाली हैं इस अर्थ में कि अपने को आज भगवान कुंदकुंद आचार्य देव का ऐसा महान परमागम समय सार, जिस पर अभी अपन गुरुदेव श्री का प्रवचन सुन रहे थे, क्या अद्भुत उनका प्रवचन था, एक एक बात। और कभी कभी आप देखो गुरुदेव श्री के प्रवचन में कि डॉक्टर की बात आएगी तो डॉक्टर को संबोधन करेंगे, ये डॉक्टर है, अभी आया था ना, सुना ना, है ना, और कभी रुपए पैसे की बात आएगी तो सेठिया, और सामने वो बीड़ी वाले सेठ जी बैठे हो तो ये तंबाकू बीड़ी ना बहुत करिया छे। यानी कहने का मतलब क्या है, आप ये समझो कि गुरुदेव श्री को अपने सभी श्रोताओं के प्रति कैसा अंदर में करुणा का भाव बहता था, है ना, उनको किसी से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन जो भी यहां आया है वो इस तत्व की बात को सुन करके समझ करके हृदयंगम करके अपनी आत्मा की आराधना का परिणाम लेकर के यहां से जाए। और सच में जो गुरुदेव श्री के लोक मांगल्य की ये जो भावना रही उनकी, तो जगत के हर जीव के प्रति कल्याण की भावना, हर जीव अपना कल्याण करे, ये जो लोक जीवन में कल्याण लोक मांगल्य की जो भावना रही कि यही भावना आगामी भवों में उनके तीर्थंकर प्रकृति के बंद का कारण होगी। और वर्तमान में तीर्थंकर जैसा युग प्रवर्ताया है और निकट भविष्य में तीर्थंकर होकर के दिव्य ध्वनि खिराएंगे, ये कोई अतिशयोक्ति वाली बातें नहीं हैं, ये आगम से सिद्ध होने वाली बातें हैं। क्योंकि तीर्थंकर कोई अलग नहीं होते, लोक मांगल्य की जिनकी भावना होती है, मैं तो धर्म प्राप्त करूं ही करूं, लेकिन सारा जगत धर्म प्राप्त करे। बालक चला जाए तो गुरुदेव बालक को कहते थे, बाल गुरुदेव से बालक पूछते कि भगवान आप कहते हो आत्मा देखो आत्मा देखो आत्मा देखो, आंखें बंद करते तो अंधेरा दिखता है, आंखें खोलते हैं तो सारी दुनिया दिखती है, भी आप कहते हो आत्मा देखो तो हाँ, तो बालक को बालक की तरह समझावे कि बेटा ये अंधेरा दिखता है तो अंधेरा अंधेरे में दिखता है कि कोई ज्ञान में दिखता है, कि जिसकी सत्ता में अंधेरा दिखता है वह आत्मा है। यानी छोटे से छोटा बच्चा हो, बड़े से बड़ा विद्वान हो, व्यापारी हो, वकील हो, डॉक्टर हो, मैं तो कई प्रवचनों में सुनता हूं तो कहीं वकील की बात आवे तो रामजी भाई को याद करे सीधा सीधा, यानी उनके पास हर क्वालिटी के लोग आते थे और हर व्यक्ति के लिए गुरुदेव का खजाना खाली नहीं होता था, हर व्यक्ति अपने खजाने गुरुदेव के खजाने में से कुछ न कुछ लेकर के जाता था। एक ऐसा युग पुरुष, एक ऐसा महापुरुष पंचम काल में कैसे आ गया एक आश्चर्य है, सच में तो है ना। नहीं तो ऐसे निकृष्ट काल में जहाँ तीर्थंकर परमात्मा का योग नहीं, सामान्य केवलियों का योग नहीं है, और मुनि भगवंतों के दर्शन दिखाई नहीं देते, ऐसे काल में गुरुदेव का अवतरण हो गया और आज हम उनकी कृपा से इस समय सार पढ़ने लायक हुए हैं, समय सार हाथ में लेने लायक हुए हैं, है ना। बहिंश्री के शब्दों में तो क्या बोला कि आत्मा शब्द बोलना सीखे हो तो एक गुरुदेव का प्रताप है। ये कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है, ये कोई केवल मात्र भक्ति की बात नहीं है, ये सच्चाई है। गुरुदेव के पहले हमारे बाबू युगल जी साहब ने बहुत अच्छी एक बात लिखी, उनने लिखा कि गुरुदेव के पहले भी आध्यात्मिक चिंतन का रिवाज तो था लेकिन चिंतन में अध्यात्म नहीं था, बातें आत्मा को कहा शुद्ध जाता था लेकिन माना वास्तव में अशुद्ध जाता था, अथवा शुद्ध कहा भी जाता था तो इसलिए कहा जाता था कि आत्मा निश्चय ने से शुद्ध है लेकिन वास्तव में अरे व्यवहार से तो अशुद्ध है ना, तो सारा वजन सारा जोर व्यवहार के ऊपर, आत्मा की अशुद्धता के ऊपर, आत्मा के विकृत स्वरूप ही मैं हूं इस बात की ओर जोर जाता था। गुरुदेव ने हमारा वो जोर बदला, अरे एक समय की पर्याय में विकृति होगी, अरे संयोग मैंने एक समय की पर्याय में अपूर्णता होगी, लेकिन तू तो स्वभाव है ना, ये एक समय की पर्याय तो खुद ही कह रही कि मैं अगले समय टाटा बाय बाय करने वाली हूं, तो जो अनंत काल तक रहने वाला है तू तो वो तत्व है ना। तो गुरुदेव श्री ने हमारी उस धारणा को बदला, हमारी उस सोचने की नजर को बदला, हमारे नजरिया को, हमारे दृष्टिकोण को बदला और वास्तव में हमें उन सिद्धों की बस्ती में ला करके खड़ा कर दिया कि तू इनसे कम नहीं है, इनसे कम अगर तू अपने को मानेगा तो तेरे भव भ्रमण का कभी अभाव होने वाला नहीं है। ये एक तत्व, एक ऐसा गजब का तत्व, निश्चय नए से तू शुद्ध है ऐसा नहीं है, अरे तू शुद्ध है उसको बताने वाले नए का नाम निश्चय नए है। निश्चय नए की कृपा नहीं हुई है तेरे ऊपर कि निश्चय नए ने कृपा करके आत्मा को शुद्ध किया है। आत्मा की शुद्धता को जानने वाले ज्ञान के अंश का नाम निश्चय नए है, निश्चय नए से आत्मा शुद्ध है ऐसा नहीं है। आत्मा अपने आप से शुद्ध है, अपने आप से पवित्र है, अपने आप से आकर्ता है, ऐसी बात इस समय सार परमागम में आचार्य देव ने अपने सामने रखी और उसी बात को अमृतचंद्र आचार्य भगवान गजब की टीकाकार हुए। शास्त्र होता लेकिन यदि उसकी टीका नहीं होती तो क्या होता, कि सब अपने अपने घर से अपने अपने मन से अर्थ करते, है ना। तो देखो एक अर्थ करने की भी पद्धति कितनी गजब की है आचार्य देव की। 31वीं गाथा का उद्धरण गुरुदेव श्री देते थे और ये भी कहते थे कि लोग ऐसा कहते हैं कि भैया ये टीकाकारों ने तो दुरु कर दिया ग्रंथ को। अरे सीधा था, इंद्रियों को जीते। अब इंद्रियों को जीतने में कोई कुछ भी अर्थ निकालता था? एक इंद्रिय शब्द में से तीन अर्थ निकाले, सोचो जरा। द्रव्य इंद्री, भावे इंद्री और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। भावे इंद्री को हम इंद्रिय मानने के लिए तैयार थे क्या? हम तो मानते थे ज्ञान है वो, लेकिन सच में वो गेय का भेद है, ज्ञान का भेद ही नहीं है। ज्ञान उसे नहीं कहते जो गायक को प्रसिद्ध नहीं करे, जो गायक को प्रसिद्ध नहीं करे उसे ज्ञान नहीं कहते। अरे स्पर्श रस गंध वर्ण, आत्मा अस्पर्श स्वभाव, अरस स्वभावी है। शुरुआत की ना 49 नंबर की गाथा में अरस, तो अरस में तो अपनी सीधा बोलते हैं ना, आत्मा में खट्टा मीठा चरपरा कसायला ये रस नहीं है, इसके लिए आत्मा अरस है। ऐसा नहीं, एक रस शब्द में से छह बोल, द्रव्य से भिन्न, गुण से भिन्न, पर्याय से भिन्न, पुद्गल की, है ना। कहां कहां तक ले गए? अव्यक्त के छह बोल। एक एक गाथाओं पर अगर अपन विचार करें ये सब, और देखो पूरा समय सार तत्व की भाषा में लिखा गया, नाटक के रूप में लिखा गया। रंगमंच पर अलग अलग स्वांग आएंगे और वो अपना स्वांग दिखाएंगे। ज्ञान का काम क्या है? ज्ञान का काम स्वांग को जानना है, और स्वांग को जैसे ही ज्ञान ने जाना वो अपने असली रूप में आ जाता है। बहुरूपिया होता है ना, अलग अलग स्वांग लेके आता है, हैं? अब छोटा बच्चा हो, इनकम टैक्स ऑफिसर, अभी तो EDCBI का जमाना है, तो वो लेके आया वेश, अरे तुम्हारे यहां बहुत गड़बड़ घोटाला है, क्या कर रखा है तुमने, कितना GST तुम खराब कर, ये करते हो वो करो। ओ बेचारा छोटा बच्चा डर गया, और वो कहता साहब कह भाई नहीं नहीं 10 लाख किससे कम में काम नहीं चलेगा, 10 लाख का कम से कम जुर्माना होगा। और बच्चा कह रहा है साहब 50,000 में लेके काम चला लो ना, आपकी भी, आपके पास भी कुछ नहीं आएगा, मेरे पास से भी चला जाएगा, तो आपका भी भला हो जाए, मेरा भी भला हो जाए। वो सब समझाता, इतने में आ गए पिताजी, और पिताजी ने कहा अरे तुम कल तो वो वेश लेके आए थे ना। जैसे ही पिताजी ने पहचाना और वो बेटा 50,000 देने के लिए तैयार था, और पिताजी ने कहा गजब हो गया, तूने मेरे बेटे को सच में प्रभावित कर लिया, ले इस बात के तेरे को 100 रुपये इनाम देता। समझ में आ गया? तो कितने रुपए में रह गया वो? 100 रुपये में नाम काम निपट गया उसका। क्यों? वेश को पहचान लिया। वेश को वेश मान लो, वेश को मूल वस्तु मत मानो। और ये चर्चा शुरू हुई जीव अजीव अधिकार से लेकर मोक्ष अधिकार तक, ठीक है ना, मोक्ष अधिकार तक चर्चा आई। मोक्ष अधिकार में अभी औरों की बात तो क्या करें, अपने को तो 320 गाथा तक चलना है। तो मोक्ष अधिकार जब पूरा हुआ तो मोक्ष अधिकार के शुरुआत में आचार्य भगवान लिखते हैं, अब मोक्ष का स्वांग रंग भूमि में प्रवेश करता है। मोक्ष को भी क्या कहते हैं? स्वांग कहते हैं। 105 नंबर का बोल बहिंश्री का, ज्ञायक परमात्मा ने कोई पर्याय वेश धारण नहीं किया है, है ना, वो बोल है, बहुत मार्मिक बोल है। तो ऐसे ही यहां पे लिया कि भाई ये मोक्ष का स्वांग है, ये एक वेश है, ये आत्मा का त्रैकालिक स्वरूप नहीं है, प्रकट मुक्ति। आत्मा मुक्त स्वरूप है, लेकिन ये मोक्ष की पर्याय तो नहीं प्रकट हुई है। सुनना, आत्मा मुक्त स्वरूप है तो आत्मा का मुक्त स्वरूप निरपेक्ष है और मोक्ष की पर्याय सापेक्ष है। इसमें कर्म के अभाव की अपेक्षा आती है, इसमें बंध के अभाव की अपेक्षा आती है, यह छायिक भाव रूप है। और आत्मा का मुक्त स्वरूप कहते वो परम पारिणामिक भाव स्वरूप है, उसमें कोई कर्म के बंध के अभाव की अपेक्षा नहीं, कोई अशुद्धता के अभाव की अपेक्षा नहीं। माने आत्मा मुक्त स्वरूप है तो वो बंध का अभाव करके मुक्त स्वरूप हुआ है, ऐसा नहीं है भाई। क्या है? आत्मा कभी बंधा ही नहीं है। बंधने का तुझे भ्रम हो गया था, उस भ्रम से छूट गया, इसी का नाम मुक्ति है और कुछ नहीं है। और पर्याय में जो बंध है, क्या पर्याय में बंध है, उस बंध का अभाव होकर के प्रकट होने वाली मुक्ति। तो किसी का अभाव होकर के होने वाली मुक्ति वो मेरा त्रैकालिक स्वरूप नहीं हो सकता। मेरा जैसा स्वरूप है उसकी वैसी अभिव्यक्ति तो वो हो सकती है, लेकिन वो मेरा त्रैकालिक स्वरूप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो भी आई हुई पर्याय है, वो भी प्रकट हुई पर्याय है। मुक्ति प्रकट हुई पर्याय है और मुक्त स्वरूप सदाकाल प्रकट है। जो सदाकाल प्रकट है वो मैं हूं, और जो नई प्रकट होती है अरे वो भी मेरे लिए परद्रव्य है। नियम सार में आ जाओ, 50 नंबर की गाथा में आ जाओ। बोला कि नहीं बोला? परद्रव्य है। छायिक भाव को परद्रव्य बोला, कितना चाहिए? 7 हाथ का शरीर हो तो 72 हाथ का कलेजा चाहिए बोलने के लिए। हैं, गुरुदेव श्री बोलते थे जब ये बात आवे ना, छायिक भाव परद्रव्य, गुरुदेव बोलते अरे अभी तो पुण्य को परद्रव्य बोले ना तो जीव को पसीना छूटे। है पुण्य को मैंने अभी तो पुण्य और पाप में अंतर कर रहा, गंदगी गंदगी में अंतर कर रहा, ये गंदगी अच्छी है ये गंदगी बुरी है। अरे गंदगी में ना गंदगी, कोई भी गंदगी के हाथ लग जाए तो हाथ धोते हैं, तो पुण्य की गंदगी हो के पाप की गंदगी हो शुद्धात्मा की अनुभूति में हाथ धोना पड़ेगा। लेकिन नहीं, भेद करेगा वहां पे। यहां आचार्य कहते हैं हमें छायिक भाव में और औदयिक भाव में अंतर नजर नहीं आता, और ये कहता है मुझे पुण्य और पाप में अंतर नजर आता है। कितनी दृष्टि की विपरीतता है बोलो। हैं, तो आचार्य भगवान ने मोक्ष अधिकार में ये कहा कि भाई रंगभूमि में स्वांग आया, और जब मोक्ष अधिकार की पूरी चर्चा हो गई जिसमें 294 गाथा, बहुत सारी गाथाएं हैं, गजब गजब की गाथाएं हैं। बहुत से लोग कहते हैं समय सार में थ्योरी है प्रैक्टिकल है ही नहीं। मैं कहा भाई साहब थ्योरी भी समय सार में है और प्रैक्टिकल भी समय सार में है। कैसे राग और आत्मा को भिन्न करना, प्रज्ञा छेनी की बात समय सार में है, क्या नहीं है प्रैक्टिकल? है ना। ले अब जब मोक्ष अधिकार पूरा हुआ तो मोक्ष अधिकार के अंत में आचार्य भगवान क्या कहते हैं कि भाई रंग भूमि में से मोक्ष का स्वांग बाहर चला गया। तो अपने को क्या लगे कि चलो बंद गया वो तो गया, मोक्ष भी चला गया, तो फिर बचा क्या? बंद चला जाए वहां तक तो हमें कोई तकलीफ नहीं, बंद तो जाना ही चाहिए, लेकिन मोक्ष भी रंगभूमि में से बाहर निकाल दिया महाराज, बचा क्या? कि तू पूरा पूरा बचा है। क्यों? क्योंकि मोक्ष से तू पूरा नहीं होता। सुनना ध्यान से, क्या कहा अभी, बहुत गजब की बातें हैं ये। तू मोक्ष से पूरा नहीं होता, तेरी पूर्णता को देखने का नाम मोक्ष होता है। क्या कहा? आत्मा मोक्ष से पूरा नहीं होता। अगर आत्मा मोक्ष से पूरा हो तो फिर मोक्ष होने के पहले किसी को सम्यक दर्शन ही नहीं होगा। और सम्यक दर्शन क्यों नहीं होगा? क्योंकि आत्मा पूरा है ही नहीं मोक्ष के बिना। वो तो मोक्ष होगा तब आत्मा पूरा होगा, और पूर्ण की श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। तो पहले मोक्ष होगा बाद में सम्यक दर्शन होगा, ऐसा होना पड़ेगा। लेकिन ऐसा होता है क्या? मोक्ष से आत्मा पूरा नहीं होता, लेकिन आत्मा की पूर्णता को जो परिणाम स्वीकार करता है और आत्मा के पूर्ण स्वरूप में जो परिणाम डूब जाता है उस परिणाम का नाम मोक्ष है। ठीक है, तो वो रंग भूमि में से वो परिणाम भी बाहर गया तो बचा क्या? तो सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार के 163 नंबर के कलश में आचार्य देव कहते हैं कि ये भगवान आत्मा कैसा है कि ये तो बंद मोक्ष की रचना से दूर दूर है। पढ़ो आप, देखो मैं पढ़ के लेता हूं फिर अपन आएंगे इस पे अपनी गाथा पे। देखो यहां पे क्या कहते हैं आचार्य देव, अब प्रथम ही मंगल रूप में ज्ञान पुंज आत्मा की महिमा का काव्य कहते हैं। अभी तक क्या था? वेश को जानने वाले ज्ञान की महिमा का काव्य कहा था। अब ज्ञान पुंज आत्मा, भगवान आत्मा कैसा है? ज्ञान का पुंज है, ज्ञान ही ज्ञान जिसमें भरा है, ऐसा ज्ञान पुंज भगवान आत्मा की महिमा का काव्य कहते। देखो आचार्य भगवान को कितनी आत्मा की महिमा, हर अधिकार के अंत में, हर अधिकार की शुरुआत में और हर अधिकार के अंत में ज्ञान की अथवा आत्मा की महिमा का काव्य उन्होंने कहा। कहने का मतलब क्या? कि आत्मा की महिमा ही तुझे आत्मा की उपलब्धि कराने में एकमात्र कारण होगी। आत्मा की महिमा नहीं आवे और आत्मा की उपलब्धि हो जाए, ऐसा तीन काल में नहीं होता। और आत्मा की महिमा आवे और आत्मा की उपलब्धि ना हो, 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़ेगा। समझ आएगी नहीं क्या? लेकिन महिमा आनी चाहिए। कैसी महिमा? अनहद महिमा। क्या होता है, महिमा के भी प्रकार होते हैं कि यहां तक तो, अगर यहां तक हमें करना पड़े तो हम महिमा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे आगे हो तो आत्मा जाए, एक और हमें नहीं करना, ऐसे नहीं चलेगा। सर्वस्व समर्पण करके अपना जीवन भी अर्पण करना पड़े, एक बार देह जाने का प्रसंग आए तो भले आ जाए, लेकिन मुझे आत्मा की आराधना को त्यागना नहीं है। मुझे देह की कीमत पर भी आत्मा की आराधना करनी है। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे आत्मार्थी को आत्मा उपलब्ध ना हो कभी संभव नहीं है, है ना। और इतनी अर्पणता आए बिना आत्मा की उपलब्धि हो जाए, संभव नहीं। गुरुदेव ने ये रहस्य निकाले, गुरुदेव ने ये स्वानुभूति प्रकट की। कैसे प्रकट की? समय सार लेके जंगलों में चले गए थे। आज अपने को 19-19 बार उनके प्रवचनों की महिमा जितनी आती है ना, उससे भी कहीं अधिक महिमा उनकी उस समय की दशा की देखो कि जब उनको समय सार मिला क्या हुआ था। खाना सुहावे नहीं, पीना सुहावे नहीं, सोना सुहावे नहीं। गुरुदेव का सुनो उद्गार उस समय के, कि एक ही धुन, आहार किया, समय सार लिया और जंगल में ऐसी जगह जाके बैठते थे, क्योंकि गुरुदेव तो क्या होता है, जैसे वो कहावत होती है ना, गुड़ होती है तो मक्खियां भिन भिनाती है, तो गुरुदेव तो इतने प्रसिद्ध पुरुष थे कि आम आदमी छोड़े ही नहीं उनको। तो गुरुदेव ने क्या किया कि ऐसी जगह जहां से रेत निकाली हो लोगों ने, ऐसे गड्ढे में जाके बैठ जाए कि कोई देख ही नहीं पावे, और ऐसे समय सार का अध्ययन करके अपने को मर्म दिया है। ये सामान्य बात थोड़ी है कोई। तो देखो यहां पे क्या कहते हैं, वो कह रहे हैं समस्त कर्ता भोक्ता आदि भावों को सम्यक प्रकार से मैंने भली भांति नाश को प्राप्त करा के पद पद पर अर्थात कर्मों के क्षोभसम के निमित्त से होने वाली प्रत्येक पर्याय में, फिर क्या कहते हैं, बंध मोक्ष की रचना से दूर वर्तता हुआ। क्या कहा? बंध की रचना से तो दूर, मोक्ष की रचना से भी दूर वर्तता हुआ। शुद्ध शुद्ध, दो बार शब्द का प्रयोग किया है, शुद्ध शुद्ध अर्थात रागादि मल तथा आवरण से रहित। दो बार शुद्ध का मतलब क्या, कि एक तो जिसमें रागादि मल का अभाव है, रागादि मल नहीं है, और रागादि मल के मल, एक तो रागादि मल को अशुद्धता कहा, और दूसरा आवरण। आवरण माने क्या होता है, ज्ञान दर्शन वीर्य की अपूर्णता। उस ज्ञान दर्शन वीरी की अपूर्णता को भी आवरण, अपूर्णता का नाम आवरण है, है ना। आवरण है वो, ज्ञान दर्शन वीरी पूरा खुला हुआ नहीं है, केवल ज्ञान, वो निरावरण ज्ञान है। और मति शुद्ध अवधि मन परिये, ये आवरण संयुक्त ज्ञान है, इन ज्ञान में आवरण है, मैंने पूरा ज्ञान नहीं, जहां तक चार ज्ञान है, क्षोभसम ज्ञान है, वहां तक ज्ञान में आवरण है। केवल ज्ञान होने पर प्रकट ज्ञान निरावरण, और स्वभाव कैसा, केवल ज्ञान होने पर परिणाम में निरावरण पना आया, स्वभाव कैसा, तो कहते सदा काल निरावरण। केवल ज्ञान आवरण का अभाव करके निरावरण, त्रिकाली ज्ञान सदा काल निरावरण। क्यों? क्योंकि यदि वो सदा काल निरावरण नहीं हो तो उसके आश्रय से निरावरण दशा की उत्पत्ति नहीं हो सकती। सदा काल निरावरण है इसलिए उसके अवलंबन से निरावरण दशा की उत्पत्ति होती है। विचार तो करो कैसा अजब गजब का तत्व है अंदर में, देह रूपी देवालय में ये भगवान आत्मा कैसा विराजमान है। तो ये भगवान आत्मा ऐसा है, बंध मोक्ष की रचना शुद्ध शुद्ध मैंने दो प्रकार के आ गए, आवरण से रहित, जिसका पवित्र अचल तेज निज रस के अर्थात ज्ञान रस के, ज्ञान चेतना रूप रस के विस्तार से परिपूर्ण है, ऐसा
जिसकी महिमा टंकोत्कीर्ण प्रकट है ऐसा यह ज्ञान पुंज आत्मा प्रकट होता है। सारे सॉन्ग निकल गए और इसके बाद ज्ञान पुंज आत्मा प्रकट होने के बाद देखो इस अधिकार की जो शुरुआत हुई 320 गाथा में तो आचार्य भगवान ने यहां तक कह दिया कि बंध और मोक्ष का कर्ता नहीं है ना। लेकिन इस अधिकार की शुरुआत जिसको अपन बोलते हैं ना, इस अधिकार की बोणी कहां से हुई है? तो इस अधिकार की बोणी हुई है आत्मा का अकर्ता स्वभाव। ये 308 से 311 नंबर की गाथा और जिन गाथाओं ने वास्तव में इस पंचम काल की 20वीं शताब्दी में एक क्रांतिकारी सिद्धांत को हमारे सामने ला करके रखा। गुरुदेव श्री ने इन चार गाथाओं के आधार पर एक क्रमबद्ध पर्याय सिद्धांत की अपने सामने जगत के सामने घोषणा की कि एक शब्द आया था। और देखो गाथा में क्रमबद्ध पर्याय को बताने के लिए क्रमबद्ध पर्याय की बात नहीं थी, अकर्ता ज्ञायक को बताने के लिए, अकर्ता को सिद्ध करने के लिए क्रमबद्ध पर्याय की बात लाए थे। तो शुरुआत हुई कि अब आत्मा का अकर्तत्व दृष्टांत के द्वारा बताते हैं, माने यहां से। तो यहां अब यहां जो शुरुआत की ना अकर्ता की, तो शुरुआत में आत्मा अजीव के परिणाम का कर्ता नहीं, एकदम बंद मोक्ष का कर्ता नहीं, वहां तक नहीं लाए आचार्य। सबसे पहले ये अभी जो अजीव के परिणामों का कर्ता अपने को मानता है, तो आचार्य भगवान ने कहा कि तेरा स्वभाव कैसा है कि तेरा स्वभाव तो अकर्ता है। अकर्ता माने क्या मतलब कि तू अजीव के परिणामों का कर्ता नहीं, जीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव है, अजीव नहीं। अजीव अपने परिणामों से उत्पन्न होता हुआ अजीव है, जीव नहीं। इन चार गाथाओं में पर द्रव्य के परिणामों से, पर द्रव्य के गुण और पर द्रव्य के परिणाम, इनसे सर्वथा अपने को भिन्न किया कि तू पर द्रव्य के परिणाम का कर्ता। अभी अपन क्या मानते हैं, शरीर का कर्ता अपन अपने को मानते हैं, अन्य अन्य जगत के पर पदार्थों का कर्ता अपने को मानते हैं। तो आचार्य भगवान ने अपने सामने एक सिद्धांत रखा कि प्रत्येक द्रव्य का, प्रत्येक समय का परिणाम क्रम नियमित अर्थात क्रम से, और वो भी बंधा हुआ, जिसके बाद जो आने वाला है, जिसका व्यय करके जो आने वाला है वो ही आएगा। तो हर द्रव्य जब अपने अपने परिणाम का करता है, अजीव अपने परिणाम का करता है, तो तू अजीव के परिणाम का अकर्ता सिद्ध हुआ। अकर्ता ये नास्तिवाचक शब्द है, इसका अस्तिवाचक शब्द क्या आएगा, अकर्ता माने वास्तव में ज्ञाता। तो यहां से आचार्य भगवान ने इस अधिकार की शुरुआत की। उसके बाद बहुत सारी बातें इस अधिकार के अंदर आई है, उनकी चर्चा तो आप विस्तार से, तो होमवर्क है, घर पे पूरा अधिकार पढ़िए, है ना। अब इसके बाद आचार्य भगवान, अपन तो सीधा 320 गाथा का आज शुरुआत थोड़ी कर लेते हैं। तो 320 नंबर की गाथा में आचार्य अमृतचंद्र देव और जयसेन आचार्य देव दोनों आचार्य भगवंतों की टीका है। और आचार्य जयसेन की टीका, अमृतचंद्र आचार्य की टीका तो है ही, लेकिन आचार्य जयसेन की टीका भी बहुत मार्मिक टीका है। और उस टीका पर गुरुदेव श्री ने कई बार प्रवचन किए। एक बार जब राजकोट में गुरुदेव श्री पधारे, पहली बार शुरुआत कैसे हुई इस गाथा के प्रवचनों की, तो राजकोट में पधारे तो वहां पूछा के साहब, वहां गुरुदेव ने पूछा क्या विषय लेना है, तो उनको उनसे फर्म बोला गया, गुरुदेव श्री निवेदन किया कि साहब इस बार हम आपसे 320 नंबर की गाथा जय सेनाचार्य देव की संस्कृत टीका सुनना चाहते हैं। गुरुदेव ने कहा भले सुनो, लेकिन सबके हाथ में हो तब तो मजा आए ना। तो उन्होंने कहा साहब आप स्वीकृति दो, ये काम भी हो जाएगा। और पहले से इतनी व्यवस्था करके रखी हुई कि सोनगढ़ पहले से हिम्मत भाई जी को फोन कर दिया था कि एक आदमी आज रात में आपके पास आएगा और वो 320 गाथा की जय सेनाचारी की टीका का गुजराती अनुवाद आप करके रखना और वो आपसे ले जाएगा, क्योंकि कल से गुरुदेव श्री के प्रवचन में 320 गाथा चलनी है, है ना। रात में वो अनुवाद आया, अनुवाद आकर के प्रेस पे गया। सोचो कैसे समर्पण वाले लोग होंगे, है ना। आज के जैसा नहीं था, कंप्यूटर से फटाफट बटन दबाया टाइप हो गया, एक एक अक्षर लगाना पड़ता था। और वो गया रात को, गुरुदेव बोले थे भाई गाथा लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सबके हाथ में हो, सबके हाथ में हो। और गुरुदेव श्री तो महापुण्य प्रतापी पुरुष, उनका विकल्प हो और पूरा ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो इधर वो अनुवाद आया और सुबह के समय गुरुदेव का प्रवचन शुरू हो उसके पहले तो 4 पेज के 1500 पेपर छपके हाथ में, सोचो। और गुरुदेव श्री से कहा, गुरुदेव श्री ये पन्ना छप करके आ गया है, अब आप 320 गाथा पर प्रवचन फरमाइए। और तब गुरुदेव श्री ने पहली बार 320 गाथा पर ये प्रवचन किए, जो प्रवचन ज्ञान चक्षु के नाम से छपे हैं। अपना इतिहास भी अपने को जानना चाहिए, अपना इतिहास भी बहुत गौरवशाली है। ये गुरुदेव ने किस किन किन परिस्थितियों में, कैसी कैसी स्थितियों में भी ये तत्व अपने सामने आया। ये 320 गाथा के प्रवचनों का वहां से प्रारंभ हुआ, और वहां से प्रारंभ हुआ। तब एक बात और बताऊं आपको इसी से संबंधित, कि इसमें एक शब्द आया निष्क्रिय पारनामिक, एक शब्द आएगा अपन जब चर्चा करेंगे ना, तो पारनामिक भाव निष्क्रिय है। तो गुरुदेव ने अगले प्रवचन में बोला कि जब पहली बार हमने ये शब्द सुना कि शास्त्र में कहा है कि निष्क्रिय पारनामिक, तब ये कौन से शास्त्र का शब्द है ये पता नहीं था। और बाद में फिर यही शब्द इन्हीं जयसेनाचार्य की टीका में प्रवचन 85 की 56 नंबर की गाथा में ये शब्द मिला, निष्क्रिय पारनामिक। ये बहुत शानदार गाथा है। पूर्व देखो इस गाथा में क्या है कि द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप पदार्थ की पहले चर्चा भी की उनने, कि पदार्थ कैसा है, तो वो पदार्थ पूरा द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप, द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ। अब द्रव्य पदार्थ पर्याय स्वरूप पदार्थ को भी बताया, और द्रव्य पर्याय स्वरूप पदार्थ को बता करके उसमें से हमारे प्रयोजन का क्या है, हमारा प्रयोजन किससे सदेगा। दो तरह की शैली होती है जिनागम में, एक होती है वस्तु सिद्ध करने की शैली और एक होती है प्रयोजन सिद्ध करने की शैली। वस्तु सिद्धि तक द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा, वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप की चर्चा, प्रमाण की चर्चा, ये वस्तु की सिद्धि की शैली है। लेकिन अगर इसमें से हमने अपने प्रयोजन की सिद्धि वाली शैली तक को नहीं अपनाया, तो 11 अंग 9 पूर्व के पाठी ये कोरे क्यों रह गए थे। जानते तो इतना द्रव्य गुण पर्याय नहीं जानते होंगे, आत्मा के बारे में नहीं जानते होंगे, आत्मा का जर्रा जर्रा जानते होंगे, लेकिन प्रयोजन परक शैली जिसमें से हमारा प्रयोजन सदे द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप वस्तु को जानने पर हम जगत के अन्य पदार्थों से न्यारे हो गए। लेकिन द्रव्य और पर्याय वस्तु के दो अवयव हैं, और अगर वे दो अवयव हैं तो दोनों का स्वरूप न्यारा न्यारा है। क्यों? क्यों अगर दोनों का स्वरूप न्यारा नहीं होता तो दो नहीं होते, और दोनों का स्वरूप न्यारा है तो उनमें स्वरूप विपरीतता है, स्वरूप विपरीतता नहीं होती तो दो नहीं होते, और अगर वे दो हैं तो दोनों समान रूप से उपादेय नहीं होते, क्योंकि अगर दोनों समान रूप से उपादेय हैं तो दो नहीं होते। नक्की तो करो, जिसको गुरुदेव बोलते थे प्रमाण ज्ञान का लोभ और निश्चयाभास होने का डर जीव को समझने नहीं देता है, है ना। और देवसेन आचार्य का उदाहरण गुरुदेव देते थे इसमें, क्या प्रमाण पूज्य है कि नहीं पूज्य है, तब वो निश्चय नहीं को पूज्यतम वाला जो वाक्य है ना आचार्य देवसेन का, श्रुत भुवन दीपक नए चक्र में, उस वाक्य पर गुरुदेव इतने रीझे कि वो वाक्य गुरुदेव के कई प्रवचनों में आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसी बहुत गजब की गाथा है, और अद्भुत गाथा है, और इस अद्भुत गाथा को अपन खाली अभी मंगलाचरण के रूप में इस गाथा को पढ़ लेते हैं, फिर इसकी चर्चा अपन कल से शुरू करते हैं।
दिट्ठी सयम पिनाणम अकारयम त अवेदयम चेव जान दिय बंद मोखो कमोदयम निजरम चेव। जो न्याय त्रत्यों ही ज्ञान नथि कारक अहो वेदक जानी जे करमो दया निरजेरा बंद त्यों ही मोक्ष।
इस तरह ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा का अकारक अवेदक है। अकारक क्यों है, अवेदक क्यों है, यदि कारक हो तो क्या आपत्ति आवे, वेदक हो तो क्या आपत्ति आवे, बहुत सारे बिंदु हैं इस गाथा में जिसकी चर्चा अपन लोग आगामी अष्टानिका के दिनों में और अपन करेंगे, शेष चर्चा बाद में।
सहजानंदी सोदस्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजा नंदी 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 सोदस्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। अशरीर सिद्ध दर्शन प्राप्त रुष्पादि मार्ग पर 24 जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। विजय क्षेत्र में विद्यमान समस्मसोभामान सिमंदरादि अजित वीर पर्यंत विश्वमान जिनेन्द्र भगवान नो जय हो। अद्य दिन मंदिर में जयवंतपण विराजमान अखंड साधना प्रत्यक्ष बाहुबली मनिंद्र भगवान नो जय हो। दिव्यधन्य नासारभूत नित्य बोधक परमागम समय सार प्रवचन सार आदि समस्त जिनवाणी मात नो जय हो। भारत क्षेत्र में सद्धर्म निर्वृद्धि करना भगवान श्री कुंकुंद आचार्य देव आदि आचार्य उपाध्याय साधु गुरु भगवंत नो जय हो। अम भक्तों पर निरंतर करुणान ध्वज और सवनाथ अनंत अनंत उपकारी प्रातस्मणि श्री कहान गुरु देव नो जय हो। प्रसन्नमूर्ति धन्यवतार पूज्य भगवती मातनो जय हो। अमूल्य तत्वना विचारक आत्मसिद्धिना प्रदाता परम कृपाल देवादि समस्त ज्ञानी धर्मात्मा संतोनो जय हो। शाश्वत पर्व अष्टानिका पर्वनो जय हो। श्री परम विराक सनातन दिगंबर जैन धर्मनो जय हो। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। बोलो द्वादशांग में समस्त परम मित्रक सुरदाता नित्य वधक जिन वाणी मातनो जय हो। रात्रि कार्यक्रम आपणे जे जाहेर कर्यो छे ए प्रमाणे छे, दरेक के खास लाभ लेवा विनंती छे। जय जिनेन्द्र।